आप सबसे निवेदन है एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच करिए, हाथ पैर स्ट्रेच करिए, इजी स्ट्रेच स्ट्रेच। ठीक है, बैठ जाएंगे। बाबा का जो ज्ञान है बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे महान साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये ज्ञान सुनाना समझाना थोड़ा कठिन लगता है। किस विधि से उनको समझाना है तो वो विधि हमें ढूंढना है, जो बाबा के बच्चे रिसर्च कर रहे हों या पीएचडी स्कॉलर्स हो या साइंटिस्ट हो, तो उन्हें विधि और युक्ति ढूंढना है। तो हम सब के बीच अभी श्रीकांत भाई और डॉक्टर राम जैन भाई आएंगे। डॉक्टर राम जैन भाई जो बाबा के बच्चे हैं, 25 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, निमहांस बैंगलोर में साइंटिस्ट थे, अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम मंडी आईआईटी मंडी में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो ऐसे बाबा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे साइंटिस्ट तक, आप सब जानते हैं कि स्पार्क कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में बहुत साइंटिस्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, तो उन सब तक कैसे रीच हुआ, कैसे पहुंचे, तो ये सिर्फ बाबा के बच्चों का ही कुछ योगदान है जो रिसर्च की विधि से उन तक पहुंचे हैं। तो राम जैन भाई जो राज्यों का मेडिटेशन करते हुए अनेक ऐसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च भी किए हैं और रिसर्च का वो पब्लिकेशन भी हुआ है, तो उनको हम स्टेज पर इनवाइट करते हैं। साथ साथ हमारे श्रीकांत भाई जी भी हैं। तो श्रीकांत भाई जी आप सब जानते हैं स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो बहुत जिम्मेवारी भी है, तो देश विदेश में वो अनेक ऐसे साइंटिस्ट से मिले हैं, मिलकर के रिसर्च को पुशअप किए हैं, तो फॉरवर्ड लेके गए हैं और उन तक पहुंचाना बाबा का काम है, लेकिन निमित्त हम इंस्ट्रूमेंट्स का भी काम है। तो श्रीकांत भाई ऐसे बहुत सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए इससे बहुत साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर से मिले हैं, तो पास्ट में जो रिसर्च हुआ है हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा के बच्चे हम भी गए होंगे कुछ स्टडी के लिए, या तो ईजी या तो ब्रेन वेव का या थॉट्स का, हम सब किए होंगे। उसके बाद वो रिसर्च क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या था, वर्तमान समय में क्या रिसर्च चल रहा है ऐसे, और भविष्य में क्या चलने वाला है, तो इन सब का स्पष्टीकरण देने हम सब के बीच डॉक्टर राम जैन भाई भी हैं, श्रीकांत भाई भी हैं जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है ही, हम सब भी हैं, तो उन सब का दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। तो अभी उनसे निवेदन करते हैं कि तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में हमको समझाए, तो आप सबसे निवेदन है कि क्योंकि हम किसी न किसी साइंटिस्ट या रिसर्च स्कॉलर से मिलते हैं, सभी तो मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता कैसे अप्रोच करें, कैसे करें, तो आप सब नोट करते जाएंगे यहाँ जो समझा रहे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि बाबा जो कहते सब तक पहुँचना है, तो इन तक पहुँचने का एक विधि जो दोनों भाई हमें समझा रहे, नोट करते हुए उन्हें हमें समझना भी है। तो फिर से स्वागत करते हुए तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि स्पष्टीकरण दें। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। ये जो सत्र हम 11 बजे तक आपके सामने विशेष प्रेजेंटेशन के द्वारा रखा जाएगा, तो आप सबके लिए यही संदेश है कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2000 आप में से कोई इस समाचार जानते हैं कि दादी जानकी को भारत रत्न के लिए और नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने के लिए प्रयास किया गया था? किसी को मैसेज नहीं है। वर्ष 2005 में कुछ ऐसे संबंध संपर्क की आत्माएं और मृत्युंजय भाई उनकी जो टीम है, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि दादी की इस विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धि है और उनको जो भी अलग अलग अवार्ड होते हैं, जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसकी हमने कभी अपने तरफ से काफी ट्राई किया था। और 2003 में हमारे साथ मिलने के लिए आए थे नोबेल जो अवार्ड देते हैं भारत की तरफ से, जिनके नाम नॉमिनेट किया जाता है, उसकी टीम आई थी हमारे पास मिलने के लिए। और उसमें उन लोगों ने जो डिमांड किया था, अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है समाज के लिए, देश के लिए और देश के हरेक नागरिक के लिए, तो उसको सम्मानित करने के लिए कुछ फैक्ट फिगर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और अभी तक आज की बात नहीं है, जब से बाबा इस संसार पर आए हैं और हम लोग अपने तरीके से बाबा की बातों को दुनिया के सामने रखने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया, उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है लिटरेचर का है। अगर आपके पास लिटरेचर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कुछ भी बात कर लीजिए और समाज को अगर पलट दो आप, लेकिन आपके पास लिखित में कुछ नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं मानता है, जिसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और ये बात जब से मैं मधुबन में हूँ पिछले 10 वर्षों से, बाबा कई सेवा कराया है, हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ हमारे पास कई ऐसे आत्माएं आती हैं बाबा के घर में सेवा करके जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं खुद कई ऐसे आने वाली गेस्ट की, उनको जो पद्मश्री पद्मभूषण अवार्ड के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, उसमें उनके तरफ से एक लेटर आया कि श्रीकांत भाई हम आपके पास सेवा किया था, अगर आप साइन करके देंगे तो हमारे नाम जो नॉमिनेट हुआ है हमें पद्मश्री अवार्ड मिल जाएगा। और ऐसे 5 लोगों को हमने साइन करके दिया है, लेकिन उनको मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन हमारे संकल्प था कि हमारी दादियां संसार को बदले हैं, हमारी टीचर बहन इतनी अच्छी अच्छी सेवा करती हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अक्सर करके हमें जो भाई बहने बताते हैं, योग भट्टी हुआ बहुत अच्छी बात है, अनुभव किया बहुत अच्छी बात है, और सबको पूछा जाए कि अनुभव कैसा रहा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आ गया। बढ़िया मजा आ गया, इसकी कोई पैरामीटर है? आपकी बात कौन सुनेगा? लोग अगर फिल्म देखते हैं ना, उस फिल्म में अगर योग की बात बता दिया जाए और आप भी देखोगे, आपके मुख से निकलेगा मजा आ गया। फिल्म देख करके योग की बात आप कहोगे मजा आ गया, और खुद संगठित योग में अकेले बैठ के योग करोगे कहोगे मजा आ गया, कोई डिफरेंस होता है ना? पर ये बात दुनिया नहीं सुनेगी आपको बात। तो ये जो रिसर्च प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जा रहा है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। खास करके टीचर्स बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस सेंटर पर हैं, आपके सेंटर पर आने वाले एक एक भाई बहन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, आपको इसके बारे में दोनों कान खोल के दिल से सुनना चाहिए जो प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, और आपकी डायरी में ये सारी बातें नोट होना चाहिए। अगर आपको नोट करने नहीं हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पीपीटी दे देंगे, लेकिन ये जो सेशन
याद करो
कह रहे थे कि आप सभी इसको नोट करें और रोज रात्रि सेशन में ऐसे ही अलग अलग प्रेजेंटेशन रखा गया है जो आपके लिए न सिर्फ जानकारी है, आप उसकी सेवा को यूज कर सकते हैं आगे सेवा को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप सुनिए बात को, नोट करें और हम एक कॉमन क्यूआर कोड बनाएंगे जिसमें जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया जा रहा है आपको मिल जाएगा। उसमें एक एक बात अगर समझ में नहीं आए हम आपको समय देंगे, कोई बात को समझना है जैसे रामजीम भाई है, हम हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी टीचर बहनें इसको अच्छी तरीके से समझें क्योंकि आपके द्वारा आगे सेवा होगा। और आज लोग उसी चीज को मांग रहे हैं, हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में लोग इतना सा करते हैं, प्रेजेंटेशन एक किताब बना देते हैं, हम एक किताब की काम करते हैं लेकिन एक पेज भी लिख नहीं पा रहे हैं। और जिसकी वजह से अब मैं आज यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, अभी इसकी डिस्कशन मीटिंग में भी चली, लेकिन कहीं से तो एक चेंजेस आना चाहिए। बहुत मेहनत किया जाता है बैकग्राउंड में, एक एक साइंटिस्ट को कम्युनिकेट करके उनको सेवा करने के लिए मुझे पर्सनली 10 से 12 साल लगे हैं आज जो हमारे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। और यहाँ प्रेजेंटेशन होगा और आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो जो एफर्ट हो रहा है उसकी आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, किया जा रहा है आपके लिए। क्योंकि मुझे भाई बहनों ने बोला कि ये प्रेजेंटेशन क्या रख रहे हैं आप, हम तो भट्टी करने के लिए आए थे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, भट्टी हम कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंज हो रहा है, दुनिया को दिखाए कैसे। आप जैसे भाई बहनों ने अपने आप को ऑफर किया, साइंटिस्ट आए इंस्ट्रूमेंट लेकर के, बाबा ने 78 में कहा था, 80 में भी कहा था, वैज्ञानिक आएंगे साधन लेकर के आपको टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट करके चेक करके बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारी उसकी राजयोग का मेडिटेशन सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें क्या होगा, साइलेंस साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करेगा और दुनिया में प्रत्यक्ष होगा बाबा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी प्रेजेंटेशन सत्र हैं आप उसको ध्यान से सुने और सुन करके नोट करें, आपकी अपनी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप किसको ज्ञान सुनाते हो, सुना नहीं पाते हैं, आप मैसेज उनको दीजिए कि ये रिसर्च हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, निमहांस में, आईआईटीस में, बुजुर्ग माताएं, अनपढ़ माताएं, बहनें योग किया, उनकी ये रिजल्ट निकली, तो सुनेंगे आपकी बात को। तो मैं रामजीम भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और वो खुद निमहांस में काम किए हैं, अभी वहां वो ट्रांसफर हुए हैं और दूसरे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप ध्यान से सुनेंगे, फिर यही दोबारा रिपीट करूंगा, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहे हैं नोट करिए, हम अवेलेबल आपको समझाने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी मैं थोड़े टाइम में जो भी आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, इट्स अराउंड 15-20 साल का जो भी कुछ रिसर्च वर्क हुआ है उसको अभी आपको मैं 15 मिनट में समझाऊंगा। आवाज क्लियर है पीछे तक? थैंक यू। प्रोजेक्टर अगर किसी को नहीं दिख रहा है, अब ज्यादा सोचिए मत, हम आपको ऐसे ही समझाएंगे, पीपीटी भी शेयर करेंगे। सो स्पार्क का जो भी कुछ काम चलता है उसका एसेंस अगर बताना है तो नटशेल में तीन तरह का काम चलता है। एक है स्व उन्नति, सबको पता होगा कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और दूसरा है योग बट्टियां, और तीसरा है एकेडमिक रिसर्च। जो भी कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली अब्रॉड भी, उन लोगों के साथ मिलके राजयोग रिलेटेड रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिसर्च हमने अभी तक किया, वो भी आपको शेयर करेंगे। तो स्व उन्नति रिलेटेड, योग बट्टी, फिर एकेडमिक रिसर्च। सार रूप में अगर कहना है, स्पार्क का मेन काम यही है। स्व उन्नति के बारे में आप सबको पता होगा, हर साल कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो जो पिछले साल चला उसका मैं यहाँ पर लिस्ट आउट किया हूँ, और वैसे ही अभी इस साल का भी नए प्रोजेक्ट्स लेंगे, आपको अनाउंस करेंगे। इसमें भी हम जितना सिस्टमैटिकली करते हैं उसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, बट इसमें ज्यादा सा हमारा फोकस अनुभव के हिसाब से होता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से नहीं होता है, बट जहां भी पॉसिबल होता है इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट्स का ऐड कर लेते हैं। योग बट्टी रिलेटेड चीजें जो भी अलग अलग जगह पर चलता है, यहां पर भी चलता है, और ऑल ओवर इंडिया रिट्रीट सेंटर्स में भी स्पार्क के ग्रुप मेंबर्स जाके कराते हैं, तो उसमें भी हम कई सारे रिसर्च करते हैं साथ साथ, क्योंकि आजकल मेडिटेटर्स डेटा जो है बहुत ही वैल्यूबल माना जाता है, क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में अगर देखेंगे कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका हमारे पास कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बीमारियां एक तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट भी नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस भी ऐड होते जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ, आने से पहले ही हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसके हिसाब से मेडिटेशन या योगा रिलेटेड जो भी कुछ डेटा है तो उसका बहुत वैल्यू है आजकल की दुनिया में। सो राजयोग रिलेटेड डेटा जो हमारे पास है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सिस्टमैटिकली, इट्स अ वेरी नीटली प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली हमारा जो रिसर्च विंग है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी रिसर्च चलते हैं लेकिन इट्स लाइक ए वेरी स्कैटर्ड थिंग। नाउ इट इज कैचिंग अप, अभी लोग सारे जो भी बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भी कुछ सिस्टमैटिकली करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को डेटा चाहिए, लेकिन हमारा बहुत सालों से पहले से ही चल रहा है। ये यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया हूं, पिछले साल एनुअल मीटिंग के टाइम पर ही जो भी भट्टी चला है तो उस टाइम की रिकॉर्डिंग है, शायद इसमें जो फोटो में है वो यहां पर भी हो सकते हैं शायद। और एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर दिखाया हूं। निमांस में जो मेजॉरिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स अभी तक हुए हैं, तो स्लीप लैब में जो हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। ये भी बीके सब्जेक्ट ही है, नींद के टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं मेडिटेटर्स में और नॉन मेडिटेटर्स के बीच में, तो उसका है वो। जो भी स्पार्क लिंक के रिसर्च हम ही खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसका मैक्सिमम इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास ईईजी का एक इक्विपमेंट है, मेन रिसर्च ग्रेड इक्विपमेंट। इसका कास्ट अगर आप देखेंगे तो आजकल के हिसाब से अराउंड 70-80 लाख लगता है, तो उतना हाई ग्रेड रिसर्च लेवल का इक्विपमेंट ही हम यूज कर रहे हैं हमारे जो भी कुछ रिसर्च चलता है। साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और किसी के पास कुछ उनका इक्विपमेंट्स है तो हम उनको उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनका इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं। बट हमारा जो मैक्सिमम डेटा है सारी इससे ANT न्यूरो कहते हैं डिवाइस का नाम, इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स है बट हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट यही है। ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ईईजी डिवाइस के अलावा हमारे पास क्या है, और भी कुछ टूल्स है, बहुत सिंपल टूल्स है लेकिन सारे रिसर्च ग्रेड लेवल के टूल्स है, आप यूज कर सकते हैं। कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कोई यूज करना चाहते हैं तो भी आप उनको बोल सकते हैं कि ये भी आप एज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कनेक्ट वन टीम के साथ मिलकर हमने डेवलप किया है। इसमें मल्टीपल असेसमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में क्या क्या संकल्प चला उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली अगर मुझे पूछना है थ्रू एप्लीकेशन रैंडमली कुछ नोटिफिकेशन देके, तो उसका हमने डेवलप करके कुछ डेटा भी कलेक्ट किया, उसका पब्लिश भी किया है, अभी भी अवेलेबल है। अगर किसी को साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी रिलेटेड बिहेवियर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स क्वेश्चनर्स ही बहुत ज्यादा यूज करके पूरे दिन में बार बार कुछ एसेस करना चाहते हैं, चाहे बीकेज या नॉन बीकेज किसी को आप जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो उसमें डाल के आप पूछ सकते हैं। सो ये स्पार्क के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया है, हमारा जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है तो उसी का ही फ्रेमवर्क लेके अलग सा बनाया है, कनेक्टोन जैसा नहीं है, क्योंकि कनेक्टोन सुनते ही लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अकाउंट्स ऐसा, बट इट्स अ वेरी सिंपल रिसर्च ग्रेड इंस्ट्रूमेंट। और ये भी एक टूल है जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं बट साइंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चनर्स हम यूज करते हैं उसको हम वैलिडेटेड क्वेश्चनर कहते हैं। वैलिडेटेड क्वेश्चनर माना कुछ एक्सपर्ट्स को हम वो क्वेश्चंस भेजते हैं, भेज के फिर उनसे हम पूछते हैं कि ये सारे कॉन्टेक्चुअली करेक्ट क्वेश्चन है पूछने के लिए या नहीं है, तो फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट्स को वही क्वेश्चंस पूछ के क्या रेस्पॉन्स आता है वो सब चीजें हम एनालाइज करके फिर फाइनलाइज करते हैं कि ये क्वेश्चनर वैलिड है या नहीं है, फिर हम उसको पब्लिश भी करते हैं जर्नल में। तो ऐसे एक वैलिडेटेड क्वेश्चनर है हमारे जो अष्ट शक्तियां हैं उसको असेस करने के लिए। तो इसका ऑलमोस्ट डेटा कलेक्शन सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका अभी पब्लिश करने वाले और 45 क्वेश्चंस है। ये आपके रिसर्च के लिए भी यूज कर सकते हैं और इन जनरल जब भी आप 7 डेज कोर्स देते हो, कोर्स देने से पहले और देने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं क्या चेंजेस आया है। जैसे मुरली में भी बाबा कहते हैं ना, जब भी आपके पास कोर्स के लिए आते हैं पहले उनसे प्रश्न पूछो स्वयं के बारे में या भगवान के बारे में, ऐसे आप अष्ट शक्तियों का भी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ बीकेस के लिए नहीं, नॉन बीकेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है बट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर 8 पावर्स, अष्ट शक्ति रिलेटेड क्वेश्चंस ही है। तो इसका और भी डिटेल्स चाहिए तो स्पार्क विंग से ऑफिस से आप पता कर सकते हैं। और डिजिटल वेलनेस रिलेटेड प्रोग्राम भी कई सारे लोग यहां पर सुने होंगे, तो उसका भी साथ साथ रिसर्च चल रहा है। उसका एक आउटकम है डिजिटल वेलनेस को असेस करने के लिए एक क्वेश्चनर, तो इसका अभी हम वैलिडेट नहीं किया बट एक PhD काम के लिए अभी यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में इसका भी वैलिडेट करेंगे। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कई जगह पर डिजिटल वेलनेस का सेशन भी कॉलेजेस या स्कूल्स में आप ऑलरेडी चला रहे होंगे, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरली इसको सही रीति से यूज करके डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें भी वो डेटा दे सकते हैं, उसको हम एनालाइज करके फिर हमारे डेटा जो है उसके साथ क्लब कर सकते हैं। तो जो भी रिसर्च एक्टिविटीज हम करते हैं वो सब अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में और अब्रॉड में भी, ऐसे लोगों के साथ मिलके हम करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में जो भी है जिसके साथ अभी तक काम किया और चल भी रहा है, तो उसका लोगोज यहाँ पर हमने दिखा है, DRDO और बैंगलोर में निमांस एक मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के लिए अपेक्स इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फिर इंडियन IIT मंडी है, फिर हिमाचल में भी और एक यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, फिर एम्स हैदराबाद बीबी नगर वहां पर भी चल रहा है काम, एम्स पटना में चल रहा है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, रिश्यूड यूनिवर्सिटी सोनीपत, फिर स्पाइनल इंजुरी सेंटर दिल्ली, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां पर काम चलता है, बट ऑफिशियली जिसके साथ अभी तक MOU हुआ है वही यहां पर हमने लिस्ट आउट किए हैं। वैसे ही इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है, जैसे बेल्जियम लीज यूनिवर्सिटी के साथ है, उनके साथ बहुत काम किया और पब्लिश भी हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच के साथ भी है, फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा और मलेशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनस, वहां पर भी कोलैबोरेशन है। तो जो भी अभी तक हमने काम किया इन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ही हमने एकेडमिक रिसर्च किया और मेजॉरिटी वर्क्स पब्लिश भी हुए हैं, और जहां पर हमने पब्लिश किया है उसका लिस्ट, जर्नल्स का लिस्ट, मोस्ट पॉपुलर जर्नल्स का लिस्ट यहां पर मैं दिखा रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हो इसका वैल्यू आपको पता है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, बट इसका अगर आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो एकेडमिशियंस होते हैं उनके सामने ये दिखाएंगे तो उनको पता है इसका वैल्यू क्या है। इसमें पब्लिश करने के लिए पहले तो आपको हाई क्वालिटी डेटा चाहिए, उसके हिसाब से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी सब चीजें बिल्कुल पक्का प्लान करके जब किए होता है तभी आप ऐसे जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। और ये जर्नल्स में एक्चुअली पब्लिकेशंस का बहुत कुछ चार्जेस भी चलता है, फॉर एग्जांपल आजकल मेजॉरिटी जर्नल्स का चार्जेस लगता है, चार्जेस समवेयर अराउंड 3 लाख से 4 लाख तक मिनिमम ऑन एन एवरेज चलता है। और इसका जैसे कुछ चीज हम खरीदते हैं तो उसका कुछ क्वालिटी रिलेटेड असेसमेंट हम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ISI है या नहीं है, फासी ब्रांडेड है या नहीं है, ऐसा ब्रांड का भी हम क्वालिटी देखते हैं। वैसे ही ये जो जर्नल्स है जिसमें हमारे डेटा रिसर्च सब पब्लिश किए हैं उसका भी क्वालिटी असेसमेंट के लिए हम कहते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब इस जर्नल में जो भी पब्लिश होता है उसका इम्पैक्ट कितना होता है, तो उसका असेसमेंट का एक नंबर जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। ऐसे यहाँ पर जो भी जर्नल्स है ये सारे इंटरनेशनली पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स माना उसका वैल्यू बहुत ज्यादा माना जाता है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर्स भी ज्यादा है। तो ऐसे हाई क्वालिटी जर्नल्स में ही हमारा आर्टिकल सारी चीजें अभी तक हमने जो रिसर्च किया उसका पब्लिश किए हैं, तो मोर देन 30 सच हाई इम्पैक्ट फैक्टर आर्टिकल्स हमारे पास ऑलरेडी है और भी बहुत सारे काम चल रहा है। अभी मैं सिर्फ 2-3 मिनट में जो भी रिसर्च वर्क हुआ है उसके बारे में अगर और किसी को आप कुछ बताना चाहेंगे क्या बता सकते हैं, आपको साइंस का नॉलेज हो या ना हो फिर भी आप कुछ बता सकते हैं, तो ऐसे एविडेंस के हिसाब से आप राजयोग के बारे में क्या बता सकते हैं उसका मैं एक एक लाइन में बताऊंगा बस, फिर उसका डिटेल्स अगर चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, पूरा आर्टिकल ही पब्लिश्ड आर्टिकल आपको मिल सकता है स्पार्क के वेबसाइट के थ्रू। सो एक रिसर्च का फाइंडिंग ये है, हमारा जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है तो इसका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बिहेवियर्स के लिए, तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कनेक्शन के लिए कुछ ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है बीच में, तो उसमें स्ट्रक्चरली भी ज्यादा फाइबर्स भी होता है और साथ साथ फंक्शनली उसका कनेक्शन भी ज्यादा होता है राजयोग मेडिटेशन रेगुलरली करने से। एक 3-4 साल का काम एक लाइन में मैंने आपको बताया, वैसे ही ये सारे एक एक लाइन का फाइंडिंग्स है, हर एक लाइन के पीछे 3-4 साल का काम है डेटा है। नेक्स्ट है राजयोग इंक्रीजेस थीटा एंड अल्फा ब्रेन वेव्स, अल्फा बीटा थीटा गामा ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे, तो इन जनरल मेडिटेशन में थीटा अल्फा वेव्स ज्यादा होता है, तो हमारे जो राजयोग मेडिटेशन है उससे भी ये कंसिस्टेंट फाइंडिंग है थीटा और अल्फा वेव्स बहुत ज्यादा होता है। उसका मतलब यह है रेगुलरली अगर कोई राजयोग करेगा तो उसका कामनेस, अंदर की जो पीस है वो ज्यादा होता है। और दूसरा है ऐसे ही और एक ब्रेन वेव्स है जिसको हम कहते हैं गामा वेव्स। ये थोड़ा फास्ट वेव्स है, ये हर एक वेव्स क्या है वो आपको इंटरेस्ट है तो आप ही ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। तो गामा ब्रेन वेव्स जो है एज ज्यादा होते होते वो गामा वेव्स कम होते हैं। तो अगर राजयोग रेगुलरली कोई करेगा उसका गामा वेव्स बढ़ सकता है। अगर गामा वेव्स बढ़ता है उसका मतलब है आपका जो एजिंग प्रोसेस है, अगर आपका भी उम्र 60 इयर्स है, 60 साल है, 70 साल है, तो 60-70 साल में जो भी कुछ डिक्लाइन होगा, जो भी कुछ काम करने का तरीका ब्रेन का कम होता है उसको आप डिले कर सकते हैं अगर रेगुलरली राजयोगा कर सकते हैं तो। क्यों? क्योंकि रेगुलर राजयोगा करने से आपका गामा ब्रेन वेव्स ज्यादा होता है। गामा ब्रेन वेव्स ज्यादा होने से आपका थिंकिंग, जैसे अटेंशन, मेमोरी, ये सारे फंक्शंस जल्दी खत्म नहीं होता है, थोड़ा लेट होता है। नेक्स्ट है जो ट्रैफिक कंट्रोल रिलेटेड चीज है, जो रेगुलरली ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उनका शिफ्टिंग कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी टू शिफ्ट, शिफ्ट माना जैसे सुबह से लेकर रात तक अलग अलग रोल्स हम प्ले करते हैं। तो सुबह आप सेंटर में रहते हैं तो टीचर के रोल प्ले करते हैं, फिर बाहर आते हैं तो कुछ सेवादारी के, या घर पे आप रहते तो मम्मा पापा, फिर ऑफिस जाते तो वहां पर बॉस। तो ये जो शिफ्टिंग कैपेसिटी है इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है। तो ये शिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत आसानी से कर सकते हैं जो रेगुलरली राजयोग करते हैं। तो ये भी एक रिसर्च का फाइंडिंग्स है जो निमांस बैंगलोर में हुआ। और कोविड के टाइम पर भी एक बहुत बड़ा सर्वे हमने किया है, यहां पर भी कुछ लोगों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो उसका भी एक फाइंडिंग ये है कि जो रेगुलरली राजयोग करते थे, राजयोग का प्रैक्टिशनर्स, उनका स्ट्रेस परसेप्शन, पर्टिकुलरली क्राइसिस के टाइम पर, कोविड जैसे क्राइसिस के टाइम पर, उनका स्ट्रेस परसेप्शन बहुत कम है कंपेयर टू नॉन मेडिटेटर्स। हम सबको पता होगा कोविड के टाइम पर कितना स्ट्रेस एंग्जाइटी था। और दूसरा है ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर रिलेटेड एक स्टडी हुआ एम्स पटना में। तो वहां पर पैनिक डिसऑर्डर माना अचानक किसी को ऐसा लगता है कि बहुत हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनको ऐसा फील होगा कि मैं अभी मर जाऊंगा। अब जितना भी समझाने का कोशिश करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, आपको इमरजेंसी लेके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी जाने के बाद पता चलेगा हार्ट सब ठीक है, लेकिन उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सच है, वो डर जो है वो सच है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट्स में भी राजयोग का यूज किया है और ऐसे पेशेंट्स में पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स बहुत कम हुआ है, उसका भी पब्लिश्ड रिपोर्ट है। और वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में भी किया है, जिनका जो बैकबोन के अंदर बहुत सारे नर्व्स चलता है, नसें जो भी कुछ चलते हैं, अगर उसमें डैमेज होता है तो बेड रिडन हो जाते हैं। बेड रिडन होने के कारण बहुत सारी मुश्किलें होती है, और सिर्फ पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर वाले जो भी है केयर गिवर्स उनको, उनसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उनको देखना पड़ता है। तो ऐसे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेड रिडन पेशेंट्स है उनको भी राजयोग सिखाया एक महीना के लिए, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हुआ, सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, केयर गिवर्स उनको जो देख रहे थे उनके घर वाले, उनका भी स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल सारे बहुत कम हुआ। और अभी भी रिसेंटली भी चल रहा है दूसरा एक प्रोजेक्ट है, जो बच्चे प्रीटर्म बेबीज होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनका एक क्रिटिकल वेट होता है, वो वेट से कम होता है, तो उन बच्चों को हम प्रीटर्म बेबीज कहते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, उनको आईसीयू में रखना पड़ता है। तो वो बच्चे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं, तो उनको सकाश दे सकते हैं। तो ऐसा एक सकाश का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में भी हमने ये देखा कि उनके जो केयर गिवर्स है, क्योंकि बच्चों के जो माँ कास होते हैं उनका बहुत टेंशन हो जाता है बच्चे एनआईसीयू में एडमिशन होते ही, तो ऐसे उनके केयर गिवर्स का जो भी कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है वो बहुत कम होता है राजयोग प्रैक्टिस करने से। राजयोग प्रैक्टिस करने से माना वो खुद प्रैक्टिस करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम उनके लिए प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, सकाश देते हैं सुबह अमृत वेले के बाद और शाम को भी, नुमा शाम के टाइम पर और बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर भी। ऐसे रेगुलरली मेडिटेटर्स उन बच्चों के लिए और उनके परिवार के लिए बाइट के सकाश देने से बच्चे जो एडमिटेड है आईसीयू में उनके पेरेंट्स का, उनका केयर गिवर्स का स्ट्रेस टेंशन कम होता है, उसका भी पब्लिश किया है। और एक स्टडी है जो जिसमें एफएमआरई ईईजी सब चीजें मिक्स करके किया है, उसका रिजल्ट यह है कि जो रेगुलर राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका अंतर्मुखी होने का जो शक्ति है वो ज्यादा बढ़ता है, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा होने से उनका मेंटल स्टेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग के लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो सब चीजें बढ़ता है। तो वो है फर्स्ट फाइंडिंग। अभी रिसेंटली एक पीएचडी का काम ऑलमोस्ट पूरा हुआ, उसका लिख रहे हैं पब्लिकेशन के लिए। अमृत वेले के टाइम का जो मेडिटेशन है वो बाकी टाइम के मेडिटेशन से कैसे अलग है। तो जैसे पहले हमने कहा राजयोग मेडिटेशन करने से थीटा और अल्फा ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण हमारा अंदर का जो शांति है, स्टेबिलिटी या कामनेस है, वो ज्यादा हम अनुभव करते हैं। तो वही सिमिलर फाइंडिंग इसमें भी है, लेकिन साथ साथ वो जो थीटा और अल्फा वेव्स ज्यादा होता है वो सिर्फ कुछ एरियाज में होते हैं, बाकी टाइम पर अगर आप करते हैं तो। लेकिन अमृत वेला के टाइम पर अगर आप करते हैं मेडिटेशन, उस टाइम का जो थीटा और अल्फा वेव्स है वो बहुत जगह पर ज्यादा होता है, थीटा और अल्फा वेव्स। तो इसका भी हम अभी लिख रहे हैं, उसका भी पब्लिश करेंगे जल्दी। उसके साथ और भी एक पीएचडी का रिसर्च वर्क चल रहा है, उसका भी ऑलमोस्ट एनालाइज पूरा हो चुका है। हम रेगुलरली म्यूजिक और कमेंट्री दोनों यूज करते हैं, कभी कभी कमेंट्री यूज करते हैं, कभी कभी म्यूजिक यूज करते हैं। तो ये दोनों यूज करने से क्या फर्क है वो देखने का ये रिसर्च स्टडी था। और इसमें भी हमने ये देखा कि चाहे आप कमेंट्री यूज करें या म्यूजिक यूज करें, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर क्या होता है वो अगर देखते हैं उसका प्रोसेसिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जो म्यूजिक रिलेटेड चीजें यूज करते हैं, साधन यूज करते हैं, वो ज्यादा अपना इमोशनल सेंटर्स को यूज करके प्रोसेसिंग करते हैं, उसके थ्रू जो भी कुछ एक्सपीरियंस होता है दे गेट दैट एक्सपीरियंस। बाकी जो कमेंट्री रिलेटेड टूल्स यूज करते हैं उनका ज्यादातर यहाँ पर जो फ्रंट पोर्शन ब्रेन है उस एरिया को यूज करके वो जो भी अनुभव होता है वो अनुभव करते हैं। और लास्ट एक है डिप्रेशन के लिए भी राजयोग को हम यूज कर सकते हैं। उसको हमने एक ईजी स्टडी किया, डिप्रेशन पेशेंट्स में नहीं किया, एक्चुअली नॉर्मल हेल्दी पीपल में किया, लेकिन उसका जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में जो ईजी रिलेटेड फाइंडिंग्स होता है, एक अल्फा एसिमेट्री कहते हैं, वो क्या है वो सब चीजें अभी हम छोड़ देंगे। अल्फा एसिमेट्री में थोड़ा गड़बड़ होता है डिप्रेशन में, वो जो गड़बड़ होता है उसका एग्जैक्ट अपोजिट फाइंडिंग्स होता है जो रेगुलरली राजयोग मेडिटेशन करते हैं। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजयोग मेडिटेशन रेगुलरली करने से डिप्रेशन का भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ रिसर्च वर्क्स का फाइंडिंग्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी जो भी मैंने एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है ये हर एक चीजें 3-4 साल का काम है और सारी चीजें पब्लिश्ड वर्क है। और ये आप कोई कॉमन पर्सन के लिए कहना तो ऐसा कह सकते हैं, अगर आप कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाके रिसर्च वर्क जो काम करते हैं उनको कहना है तो भी आप पूरा आर्टिकल भी दे सकते हैं, उसका पब्लिकेशंस भी हमारे पास है। स्पार्क ऑफिस में अगर आप पूछेंगे तो छोटा सा एक बुकलेट है, सिर्फ 15-20 पेज का ही है, A4 साइज का भी, हाफ साइज का ही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो भी है कास्ट टीचर्स हर एक अपने सेंटर के लिए वो बुकलेट लेके जाए। आप जहां भी कोई कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वहां पर आप कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ वो बुकलेट देंगे तो उनको समझ में आएगा ये लोग कितना साइंटिफिक रिसर्च काम करते हैं। और फ्यूचर के लिए हमारा प्लान यही है, वेलनेस रिलेटेड एक बहुत बड़ा डेटा अगर पूरा दुनिया में कोई कलेक्ट करना चाहे वो एक्चुअली बीकेएस के अलावा कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और बहुत सिस्टमैटिक है। तो पूरे दुनिया में अगर वेलनेस रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए मेडिटेशन डेटा हम एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करेंगे, वही डेटा को यूज करके एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव वेलनेस का एप्लीकेशन हमारे से कोई बेटर बना नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास डेटा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन इसमें हमें हजारों में डेटा चाहिए, उसका हम प्लान करके आपके पास आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू, ओम शांति। मैं अभी जल्दी निकल जाऊंगा, मेरा और भी कुछ मीटिंग्स है। थैंक यू, ओम शांति। बाकी अगर कुछ पूछना है तो बाद में हम मिल सकते हैं।
आप सबके समक्ष हमने जो प्रेजेंटेशन रखा रामजेम भाई ने, तो ये 2010 से लेकर अब तक लगभग 16 इयर्स का प्रेजेंटेशन है। काफी चीजें आपकी आप सुन रहे हैं, सुन जब समझने कोशिश कर रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं तीन बात जस्ट आपको क्लैरिफाई देना चाहूंगा। अगर आप कहीं बात करेंगे कि हमने ब्रह्मा कुमारीज में स्पार्किंग रिसर्च किया कि जब बीके मेडिटेटर्स पर वो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए तो पता चला कि उनके जो ये फ्रंटल लोब जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हुआ, ये वाला पोर्शन, या लेफ्ट राइट में बैलेंस रहा, तो कहेंगे कि बाकी मेडिटेशन तो उनसे भी हुआ है, आपके डिफरेंस क्या है? तो आप ये बता सकते हैं बाकी मेडिटेशन जो करते हैं वो आंखें बंद करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं आंखें खोल के करते हैं, और इस योग में संबंध में आते हुए भी योग लगाते हैं। जैसे रामजीम भाई ने कहा कि शिफ्ट करते हैं हम, आप अभी ऑफिस में हो तुरंत आप घर में आए और वहां के वातावरण अलग है और यहाँ के वातावरण अलग है, और हमारी बहनें तो एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं ना, इतनी टास्किंग होता है कि वहीं पर कोई दूसरी बात अगर कहा जहां पर ब्रह्मा भोजन होता है और जो मेन टीचर बहन उनको एक साथ 25-30 लोगों से हैंडल करना होता है, और हमारी इतनी गारंटी है अगर आपको टेस्ट कर दिया जाए आप अव्वल नंबर पास होंगे बाकी फेल हो जाएंगे, और उसके सामने एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारे ऊपर कई लोगों ने टेस्ट कर लिए हैं और मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं, लेकिन इस बात की नहीं है कि हमें क्या करना है, डिफरेंस इतना बताना है कि दुनिया वाले मेडिटेशन करने के लिए बहुत कुछ छोड़ के करना पड़ता है, हम चलते फिरते भी बाबा को याद कर सकते हैं, इसके ये प्रमाण है जब राज्यों की बात करते हैं। और दूसरी बात आप बताएंगे, जैसे कि कोई आप सुना होगा डेटा, डेटा का मीनिंग होता है अभी जैसे आप बैठेंगे 11 तारीख को रात को एक सेशन रखा गया आप सभी के लिए, एक भाई को बुलाया है, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक मिनट टेस्ट करते हैं, दो मिनट करते हैं, पांच मिनट करते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकलता है आप उसको समझेंगे कैसे, बड़े सिंपल लैंग्वेज में, वो 11 तारीख को भोजन के बाद रात्रि भोजन के बाद रखा है, खास डेमो किया जाएगा यहाँ पे, जैसे आप उंगली रखा वो इंस्ट्रूमेंट में आपकी स्किन रेस्पॉन्स रिकॉर्ड होगा, वो बन जाएगा एक डाटा बन जाए, रिकॉर्ड हो जाएगा, वो जिस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है उसको डाटा कहते हैं, जैसे अभी आप वीडियो में आप रिकॉर्ड हो रहा है ये डाटा के फॉर्म में दुनिया में जा रही है, आप यहाँ बैठे हो आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है और AI उसको कैप्चर कर रही है, और उनको पूछोगे कि ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर आज की डेट में कितने लोग बैठे थे, वो एक मिनट में आपको जवाब दे देगा कितने लोग बैठे थे, मतलब यहाँ वीडियो डिपार्टमेंट की भाई बहने रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं यूट्यूब में, और आप बैठे बैठे दुनिया में जा रहे हो, उसको कहते हैं डाटा, उसकी कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में, मैं इसलिए बताया कि पूछे आपको आप उनको जवाब दे सकते हो। और तीसरी बात है जो रामजीम भाई ने कहा कि आप सभी भाई बहनों की हमने कुछ समय यूज किया था, जैसे अमृत वेले योग, भाई बहन ने समय दिया उन्होंने योग लगाया उनकी रिकॉर्डिंग हुई, कई बार भाई बहन कहते हैं कि मुझे अमृत वेले बाबा को याद करना न कि मशीन को याद करना है, ये भी हमें आंसर मिलता है, 100 भाई बहनों को पूछेंगे 5 आंसर करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग देंगे, बाबा तो कहते हैं कि हर चीज से परे रहो, बाबा चाहते हैं कि आप अमृत वेले बाबा को याद कर रहे हो, उसकी प्रॉपर याद की जो चार्ट हम देना चाहते हैं लिखित रूप में, और जब आपके ऊपर मशीन लग जाता है तो रियल चार्ट मशीन रिकॉर्ड करता है। और मैं कई बार भी कहा हूं चाहे बाबा के बच्चे अगर दिन में 10 मिनट भी बढ़िया से याद कर लेते हैं और वो 10 मिनट उनका पक्का है, कभी वो चेंज नहीं होता है, तो भी ब्रेन में शरीर में चेंज आता है। अगर हर घंटे में एक मिनट आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 10 बजे से 10 एक तक एक मिनट के लिए रोज योग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रलय आ जाए, तो भी अगर उस एक मिनट को आप अटेंशन देंगे तो भी चेंजेस आता है। अभी आंखें खोल करके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में ही बात कहना चाहेंगे जो रामजी भाई लास्ट में कंक्लूड किया। हमने प्लान किया है 90 ईयर सेलिब्रेशन में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं और वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। दुनिया में जो रिसर्च होता है लोग आते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट को, लेकिन हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है हम ले करके जाते हैं आप सबके पास। अभी इस पर प्लान किया है जोन वाइज सब जोन वाइज वो इंस्ट्रूमेंट लेकर हम आएंगे और आप सभी चाहे स्पार्क के मेंबर हैं या नहीं हैं, जब भी आपको क्लास में अनाउंसमेंट हो आपकी जोन लेवल से या लेटर जाए, यहाँ जो बैठे हैं जब भी आपको पता चले कि हमारी ईज रिकॉर्डिंग करने के लिए खास स्पार्क से भाई बहन आए हैं तो आप अपने तरफ सफर करो। हमारे लक्ष्य हैं अगर हम 50,000 भाई बहनों की रिकॉर्डिंग कर लिया ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, अभी तक हम लोगों ने 500 कर लिया है, वो आगे करेंगे जरूर। मैं बात क्यों कहा क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ जो हमारे लिस्ट में है इस हल में अभी भी लगभग 1,000 भाई बहने बैठे हैं। अगर 1,000 में से आप 700 भाई बहने अपने आप को डेडिकेट किया कि जब भी हमें मैसेज मिलेगा चाहे साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर के थ्रू ऑनलाइन में या हमारे ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट की टेस्ट किया जाए हम तैयार हैं। जब आपके दिल से आवाज निकलेगा आप सोचना उसी सेकंड बाबा प्रत्यक्ष होने की उसकी रास्ता निकल आएगा। जब तक आप दिल से नहीं करेंगे नहीं होगा, हमको मोटिवेट करना पड़ता है कि आइए कुछ नहीं होगा। एक बहन को लगाया, लगाने के बाद उनकी यहां पर पसीना निकल आया बिल्कुल 2 मिनट में पूरा दिख रहा था। फिर हम पास में बैठ कर समझा नहीं ये जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं कुछ नहीं होगा, और 10 मिनट बाद दोबारा किया तो एकदम बढ़िया से की, रिजल्ट अच्छा आया। वो हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप सबसे लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि जब भी आपको दीदियों की तरफ से मैसेज आए कि हम चाहते हैं कि एक रिसर्च हो आप अपने समय दें, और मिनिमम समय जब रिकॉर्ड होता है 2 घंटा ब्रेन के लिए और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए 1 घंटा, बस 3 घंटा समय आप देंगे तो आपका एक नाम बाबा की डायरी में लिखा जाएगा, बाबा सिग्नेचर करेगा कि ये बच्चा और ये बच्ची मेरे लिए 3 घंटे का समय दिया। हो सकता है ऐसे? सभी हाथ उठा रहे हैं ना, बाबा देख रहे हैं क्योंकि हम पहली बार यहाँ बैठे हैं, बाबा का पूरा फोकस इस मानसरोवर दिव्य शक्ति हाल में। तो आप मेरे सामने हाथ नहीं उठाया, किस सामने हाथ उठाया? तो बाबा मुझे सोने नहीं देगा जब तक आपकी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, ठीक है? ओम शांति।